السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نام تو جیسے آپ لوگوں کو میرا پتہ چل گیا کہ میرا نام بشرا ملک ہے, اور جہاں تک ایجوکیشن کی بات ہے تو میری ایجوکیشن ایم فل تک ہے, اور میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی پاکستان سے پڑھا ہوا ہے, جس میں میرا جو ایم فل ہے وہ اصول الدین میں ہے. پھر اس میں میرا جو اصول الدین میں یعنی اسلامک اسٹڈیز میں جو میری اسپیشلائزیشن ہے وہ حدیث میں ہے. تو اگر اب جیسے ہمارا جو سبجیکٹ ہے گرامر, اس کے حوالے سے بات کی جائے, تو میں نے میرا جو گرامر کا سفر ہے وہ 2004 میں سٹارٹ ہوا, جس میں میں نے فرسٹ ٹائم پہلے گرامر پڑھی ایک ڈپلوما کورس میں, اور اس میں بھی اسی طریقے سے گرامر کے ساتھ جو قرآن مجید کا ایک لنک ہے, ریلیشن شپ, اس کے حساب سے ہم نے گرامر کو پڑھا. یعنی لینگویج کے حساب سے نہیں, صرف قرآن مجید میں کہاں کہاں کون کون سے رولز اپلائی ہو رہے ہیں, صرف انہی چیزوں کو ہم نے ٹچ کیا اس کورس میں. پھر اس کے بعد 2005 میں میں نے جب اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, تو اس میں پورے ایک سال کا ہمارا ڈپلوما ہوا تھا, جو کہ ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ اور لسننگ, ان چاروں اسپیکٹ سے تھا. یعنی پھر جو میرا سفر شروع ہوا وہ اس کی پوری لینگویج کے اوپر تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہم لوگوں کا پھر آگے اسلامک اسٹڈیز میں جو ہم لوگوں نے سارا کچھ پڑھا 2006 سے لے کے 2014 تک, وہ سارا جو میرا یعنی اس میں ایک جو مین عربک لینگویج تھی وہ ساتھ ہی ہمیشہ رہی, کہ جو لیکچرز ہوتے تھے وہ موسٹلی عربک میں ہونا, اور وہ سارا پھر لینگویج کے ساتھ ایک ریلیشن بنا رہا. تو اس کے بعد اگر ہم عربک ڈراما کی طرف آئیں, جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کا اگر ہم تھوڑا انٹروڈکشن لیں, تو اس میں انشاءاللہ جو ہمارا کورس ہے اس میں ہم عربی سیکھیں اور قرآن مجید سمجھیں. یہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر عامر سہیل کی, جس سے ہم مستفید ہوں گے, اور ترتیب انشاءاللہ اسی کتاب کے حساب سے ہوگی, اور کچھ چیزیں ہو سکتا ہے میں یعنی اس کتاب کے علاوہ بھی کہیں اور سے کنسلٹ کر کے اپنی جو میری اور بکس ہیں ان سے دیکھ کہ آپ لوگوں کو پڑھاؤں, لیکن جو ترتیب ہے وہ مینلی اسی کتاب کی ہوگی انشاءاللہ. پھر اس میں اگر ہم گرامر کو دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید کو اس میں عربی زبان میں نازل کیا, تو اگر ہم تمام انبیاء کی طرف دیکھیں تو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سسٹرز, الحمدللہ ابھی ہمارا گرامر کا انٹروڈکشن چل رہا ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اور الحمدللہ جب یہ بک کا یہاں پہ ذکر ہوا, تو انشاءاللہ تعالی یہ بک آپ کو آن لائن اویلیبل ہوگی انشاءاللہ, اور ہم آپ کو انشاءاللہ اس کو ضرور بھیجیں گے. ٹھیک, تو آپ نے اس کے لیے بھی پریشان نہیں ہونا. اور ماشاء اللہ سسٹر بشرا دوبارہ روم میں انٹر ہوئی ہیں. سسٹر بشرا آپ پلیز ہینڈ ریز کیجیے گا جب آپ ریڈی ہوں, تو انشاءاللہ میں مائک ڈراپ کر دوں گی. جی اچھا, یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنی سسٹرز ہیں؟ اچھا الحمدللہ, چلیے ہم پھر سسٹر بشرا کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور دوسرا اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا, جیسے حضرت موسی تو اسی طریقے سے اگر ہم ان کا موزہ دینے کے لیے ساتھ
यहीं से मैंने पढ़ा है।
पास चली जाएगी और स्क्रीन पे आपको
अच्छा
जो विषय बोलिए।
आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कंटिन्यू करें।
तो इसमें जैसे मेरी बात यहाँ खत्म हुई थी कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक को मैसेज दिया और दूसरा मौजजा, यानी इन दोनों में अल्लाह ताला ने डिफरेंस रखा कि मैसेज अलग से और मौजजा अलग। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद दिया जिसमें पैगाम भी इसी के अंदर है और मौजजा भी इसल कुरान मजीद ही है। तो अब जैसे अगर हम इस चीज को देखें कि कुरान मजीद की ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा आप होती है, डायरेक्ट टेक्स्ट के साथ उसको समझना बिल्कुल एक दूसरे नंबर पे चीज चली गई, बहुत किल्ला कली लोगों की है डायरेक्ट टेक्स्ट से इसको समझती है। तो उससे क्या हुआ कि जो ट्रांसलेशन आम नहीं तो उससे वो मैसेज तो मिल जाता है लेकिन जो कुरान मजीद का एक मेरिट है अल्लाह ताला ने जो रखा है वो आपको नहीं मिलता, जो कि अरबी जबान के अंदर ही है। तो अगर हम अरबी जबान
सिस्टर बुशरा आवाज ठीक नहीं आ रही है आपकी।
जैसा कि अल्लाह ताला ने हर नबी को गीत का और कुराने में जिसके अंदर पैगाम भी, अगर हम कुरान को समझ करें तो इसमें जैसे कि कुराने मजीद की अगर ट्रांसलेशन हम देखें
आप
तो उसमें हमें
अपना
मैसेज मिल जाता है लेकिन उसका जो मिरेकल है वो बिल्कुल वाजे नहीं रहता। तो अगर हम कुराने मजीद की अरेबिक टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें तो उससे फिर जो कुराने मजीद का मोजा है उसमें भी हमें ज्यादा अच्छी समझने में मदद मिलती है। और यही वजह है कि सहाबा कराम का ईमान कुराने मजीद को सुनने के बाद इतना ज्यादा हो जाता था कि वो रोना भी शुरू हो जाते थे और अमल में भी उनके एक तेजी आती थी। लेकिन हम लोगों के ईमान के ऊपर उस तरीके से असर नहीं पड़ता इन सब चीजों में। और फिर अगर हम एक आम अपनी जिंदगी से मिसाल लें कि जब हम पोइट्री को ट्रांसलेट करते हैं, पोइट्री की शरह करते हैं, तशरी करते हैं, तो उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है जो कि इंसान का कलाम है। तो इसी में अगर हम देखें कि अल्लाह ताला का कलाम फिर उसको हम सिर्फ तर्जुमों के साथ पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें और डायरेक्ट टेक्स्ट जो अल्लाह ताला ने भेजा है उसको हम अहमियत ना दें तो वो फिर कितना ज्यादा मैसेज के अंदर और एक बहुत वाजे फर्क आ जाता है। फिर अगर हम तराजुम को जिस तरीके के साथ लेकर चलते हैं तो आप देखें कि हमसे जो पिछले मजाहिब हैं, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इसमें देखें हम कि जितने भी इनहराफात आए हैं वो सब तराजुम ही की वजह से आए हैं कि उन्होंने अपनी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज थी वो छोड़ दी और उन्होंने तराजुम के ऊपर बिल्कुल इन्हिसार करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उनके पूरे दीन के अंदर एक किस्म की चेंजिंग आ गई। और इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे जो एक जबान के मजाज हैं या जो एक जबान में चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं लोगवी एतबार से अगर हम देखें तो उनको जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो वो बिल्कुल उसके जो मानी है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम इसमें आपको मैं एक इसमें अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि जैसे कुराने मजीद में भी एक आयत आती है, कुराने मजीद में एक आयत आती है वक्तुल बुयूता मिन अबवा बिहा, जो इसमें जैसे कुरान मजीद में एक आयत आती है वक्तुल बुयूत मिन अबवाबिहा, के दरवाजों से दाखिल हो, और इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जाके देखें तो क्या था कि कुरैश के अंदर एक आम प्रैक्टिस ये पाई जाती थी कि जब वो हज के लिए घर से बाहर जाते थे उसके बाद अगर उनका जादेरा या कोई चीज भी उनकी मिस हो गई है घर में तो वो घर के दरवाजे से एंटर नहीं होते थे बल्कि वो अपने जो दीवारें हैं वो फलांग के या घर के पिछला कोई दरवाजा है तो उधर से आके फिर अपने घर में जो भी उनका काम होता था वो करके दोबारा जाते थे। लेकिन अगर हम अरबी जबान में इसी सेंटेंस को देखें जो कि एक मजाज है उसका अगर हम देखें इस्तेमाल तो उसमें क्या होता है कि ये हर चीज के लिए इस्तेमाल होता है जब आप पॉजिटिव वे में आप यानी कोई भी काम कोई शख्स कर रहा है जो कि नेगेटिव तरीके से कर रहा है तो आप उसको फिर उस टाइम ये कहते हैं वक्तुल बुयूत मिन अबवाबिहा, कि घर में उसके दरवाजे से दाखिल हो। ये एक मजाजी मानी में इस्तेमाल होता है कि हर काम को राइट वे में करो। तो आप ये चीज देखें कि अगर हम इसका सिर्फ तर्जुमा समझें और अरब लोग इस जुमले को किस तरीके से इस्तेमाल करते थे इस चीज को हम ना समझें तो एक मानी में कितनी चेंजिंग यानी एक मैसेज आपको पूरा नहीं मिल रहा। और इसी तरीके से फिर आप ये चीज देखें कि अगर हम इस कंसेप्ट के साथ इस आयत को पढ़ें तो फिर वो सिर्फ हमें एक हज के मामले में ही क्लियरेंस नहीं देती कि आपने अगर आप अपने दरवाजे से निकल गए हैं तो फिर आप दरवाजे ही से दाखिल हों, बल्कि आपको पूरी आपकी लाइफ के अंदर ये चीज सिखाता है कि हर काम को सीधे तरीके से राइट वे से करो। फिर इसमें अगर हम ग्रामर के एतबार से देखें तो इसमें अगर हम ग्रामर के एतबार से देखें कुरान मजीद के अंदर कुछ एग्जांपल्स कि ग्रामर किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो इसमें सूरतुल बकरा की एक आया है 186 आया जिसमें आता है वَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे सवाल करें यानी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा रहे हैं कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे सवाल करें तो उनसे ये कह दो कि मैं करीब हूँ और मैं हर दुआ करने वाले की दुआ सुनता हूँ। तो इसमें यहाँ पर आपको एक लफ्ज मिल रहा है फइन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई। अब ये जो दावा का वर्ड है ये ग्रामर में इसको कहा जाता है कि ये मस्तर मर्रा है यानी कोई भी काम जो एक बार किया जाए। तो अब ये आप अगर सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लें तो आपको नहीं पता चलेगा लेकिन जब आप ग्रामर के तरीके के साथ कुरान मजीद को समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं दावत दाई के दुआ करने वाला मेरे पास सिर्फ एक बार आएगा दुआ करने के लिए तब भी मैं उसकी बात सुनूंगा और उसे जवाब दूंगा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रामर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर इसी तरीके से जैसे अराब की बहुत बार गलतियां हो जाती हैं हम जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो उसी की मैं एक एग्जांपल छोटी सी देना चाहूंगी। ये भी सूरतुल बकरा ही की आया है फहजमूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमा। इसमें अगर हम दो अल्फाज को ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखें कि वक़तल दाऊद जालूत के दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल किया। अब अगर हम इसमें इराब की थोड़ी सी चेंजिंग्स कर दें वक़तल दाऊद तो क्या होगा कि दाऊद अलैहिस्सलाम का कत्ल हुआ। यहाँ पर जो आयत में है यहाँ पर आयत के अंदर क़तल दाऊद है यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम काम करने वाले हैं वो कत्ल करने वाले हैं लेकिन अगर हम इसमें मिस्टेक कर देते हैं और हम इसको पढ़ देते हैं वक़तल दाऊद तो इसका क्या मतलब होगा कि दाऊद अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया। यानी इससे हमें पता चलता है कि ग्रामर की जो छोटी छोटी चीजें हैं बाज दफा हम इंसान होने के नाते गलती कर जाते और हम उसको अहमियत नहीं देते तो उससे मीनिंग के ऊपर कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। फिर इसमें हमें एक हदीस भी मिलती है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलता है कि जो भी कोई शख्स कुरान सीखता है और सिखाता है तो वो सबसे बेहतरीन लोगों में से है। जैसे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, कि जो भी कुरान सीखे और सिखाए वो बेहतरीन लोगों में से है। और ये जो ग्रामर का इल्म है ये भी इसी के अंदर आ जाता है कि कुरान मजीद सीखना सिखाना, यानी सीखने में फिर उसके तमाम उलूम भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो सब उलूम हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि हम कुरान मजीद को अच्छे तरीके के साथ सीखें, समझें, और फिर जाहिर है सीखने के बाद जो अगला स्टेप है वो उसके ऊपर अमल का आ जाता है। तो अरबी जबान की अहमियत अपनी जगह है बहुत, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को कुरान मजीद को कुरान मजीद को नाजिल करने के लिए अरबी जबान का इंतखाब किया। और इस जबान को सीखना, चाहे हम सिर्फ ग्रामर के अतबार से सीख रहे हैं या फिर हम पूरी जबान को सीख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे दीन के साथ मुंसलिक है, ये हमारे कुरान मजीद के साथ मुंसलिक है, हमारी नमाज के साथ मुंसलिक है, जो हम पूरे दिन में 5 दफा रिपीटेडली एक अमल कर रहे होते हैं। और फिर हम कुरान मजीद की अगर एक आयत देखें, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि और तहकीक हमने कुरान मजीद को आसान कर दिया है जिक्र के लिए, याद दहानी के लिए, तो क्या कोई तुम में से है जो याद दहानी करे। तो यहाँ पर बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम लोगों को कुरान पढ़ने में उसकी तजवीद के अतबार से, तफसीर के अतबार से, या किसी भी अतबार से हमें कुरान मजीद मुश्किल लग रहा होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि मैंने कुरान को आसान कर दिया है। जो शख्स नसीहत लेना चाहता है, जो शख्स याद दहानी करना चाहता है, उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को आसान कर दिया। और ये अल्लाह ताला का वादा है कुरान में। तो जो छोटी मोटी मुश्किलात आती हैं इंसान की इंसान को समझने में, तो उन सारी चीजों को हमें बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए, और फिर उस वक्त हमें इस आयत को याद करना चाहिए कि अल्लाह ताला का वादा है और ये जो मुश्किल है ये टेम्परेरी है, इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगी। और मैं अपनी बात को आखिर खत्म करूंगी एक हदीस के साथ कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल माहिरु बिल कुरानी मा सफरति किराम अल बररा, कि जो कुरान मजीद का माहिर है वो फरिश्तों के साथ होगा। ये जो किराम अल बररा है ये फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला के यानी एक चोजन और नेक फरिश्ते, तो खैर सभी ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की तमाम बातों को एज इट इज करते हैं। तो जो कुरान को माहिर है यानी उसकी रिसाइटेशन में, मेमोराइजेशन में, या उसको समझने के अतबार से, वो फरिश्तों की सफ में उनके साथ होगा। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वल्लदी यतकाका फीही वहुव शाक्कुन अलैही फलहू अजरान, ये जो दूसरा पोर्शन है ये इनफैक्ट हम लोगों के लिए है कि और वो शख्स जो मुश्किल महसूस करता है, या तकाका होता है कि यानी आप जैसे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपसे एक लफ्ज एक सिटिंग में नहीं ठीक हो रहा, आप उसको आधा पढ़ते हैं फिर तोड़ के दोबारा शुरू कर देते हैं, फिर तीसरी दफा पढ़ते हैं, और फिर आपको इतनी ट्रायल्स के बाद जो है वो आपसे ठीक तरीके के साथ प्रोनाउंस होता है। तो ये तकाब काफी है, वह शाक को ना ली है, और वो पढ़ा है और उसको मुश्किल हो रही है बड़ी, क्योंकि उससे वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, पढ़ना चाह रहा है, लेकिन फिर भी वो उससे सीधा नहीं हो रहा। तो फलहू अजरा, तो इस शख्स के लिए 2 अजर है, यानी जो माहिर बिल कुरआन है उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कैटेगरी में रख के छोड़ दिया, लेकिन जो शख्स मुश्किल के साथ इस इल्म को हासिल कर रहा है, चाहे वो तजवीद है, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो तफसीर है, और चाहे कोई और इल्म है जो कि कुरान के साथ लिंक्ड है, तो उसके लिए 2 अजर है। यानी जो माहिर बिल कुरआन है उससे ज्यादा अजर उस शख्स को मिल रहा है जो कि मुश्किल के साथ इस इल्म को हासिल कर रहा है। और इसमें फिर दुआ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जब भी इल्म हासिल करने लगे तो उसके लिए हम दुआ करें। और जैसे हमें दुआओं में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत अच्छी दुआ है कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, कि अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा करना, मुश्किलात पैदा ना करना, और हमारे جو بھی ہم سفر شروع کر رہے ہیں اس کا خاتمہ بالخیر ہو, کیونکہ اصل میں یہ جو خاتمہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہماری زندگیوں کے خاتمے دیکھ لیں, ہمارے کورس کے خاتمے دیکھ لیں, کسی بھی چیز کا جو اینڈ اپ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے خاص طور پر خاتمے کے لیے بھی دعا کی گئی کہ جو خاتمہ ہے وہ خیر کے ساتھ ہو. اور پھر ہمیں اپنی نیت بھی بہت کلیئر صاف رکھنی چاہیے کہ ہم یہ جو علم حاصل کرنے لگے ہیں گرامر کا, اس کی جو انٹینشن میں ہے وہ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ بوجھ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. کیونکہ ہمیں جیسے ایک حدیث کا پتہ ہے, ویل نون حدیث ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی سن رکھی ہو, کہ تین لوگ ہیں جو کہ جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جائیں گے. ان میں سے ایک شخص قاری ہے, ایک صدقہ کرنے والا ہے, اور تیسرا جہاد فی سبیل اللہ کر کے اس میں شہید ہونے والا ہے. لیکن ان تینوں کی انٹینشنز دنیا کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے. تو اسی لیے یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اپنی انٹینشنز کو ہم بار بار کریکٹ کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خالص رکھیں. اور پھر جو اس سے پہلے تجوید کی کلاس میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی صبر, اس کے اوپر بات ہوئی, اور میں بھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کروں گی کہ صبر بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ ہمیں بہت سارے ایسے سٹیپس ہوں گے کہ کچھ چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی, کچھ چیزوں کو ہمیں ہو سکتا ہے ہم 3-4 بار ریپیٹ کروانے کے بعد بھی ہمیں وہ سمجھ نہ آئے. تو اس کے لیے پھر ہمیں صبر کے ساتھ کام کرنا ہے, دعا اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر علم کے دروازے کھولیں. اور صبر کے لیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ سبق ملتا ہے کہ صبر جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گی, اور انشاءاللہ ہم لوگوں کا منڈے سے گرامر کی پراپر کلاس ہوگی جس میں ہم گرامر کے رولز کو انشاءاللہ شروع سے شروع کریں گے اور سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو گرامر کے تھرو انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.